생각하면 किसी को हिंदी नहीं तो आखिरी पेपर में फेल हो जाएंगे। अभी अभी तक माया पेपर ले रही थी क्या? अभी तक माया पेपर ले रही थी। माया के पांच सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच और सहयोगी सिर हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, के पांच मुख। तो अभी प्रकृति माता भी झाड़ू लेके खड़ी हुई है, वो भी परीक्षा लेगी। अगर परीक्षा लेने वाले दो दो हो गए, इसलिए भाषा अगर नहीं आती होगी तो बाबा की वाणियों को गहराई तक नहीं समझ पाएंगे।
सबसे बड़ा शैतान।
अब सोचो बताओ, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें भगवान कौन और शैतान कौन है? भगवान का रूप कौन और शैतान का रूप कौन? न भगवान का पता न शैतान का पता है। और भगवान का पता तो तब चले जबकि परीक्षा हो, फाइनल परीक्षा हो, उसमें पास होके दिखाए तभी तो पता चले। अभी तो सब कहे हमने पहचान लिया, हमने जान लिया, हमने जान लिया, हमने कोर्ट में निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि ये भगवान है। लेकिन जो कोर्ट में निश्चय पत्र लिख के दे दिया उसकी फाइनल परीक्षा हो गई? हो गई? अभी परीक्षा तो ही नहीं। फाइनल परीक्षा में पास हो जाए तब कहा जाए कि भगवान को भी पहचान लिया और शैतान को भी पहचान लिया। अच्छा, रचयिता और रचना को पहचान लिया है? रचयिता कौन है और रचना कौन है उसको पहचान लिया है? शिव बाबा रचयिता, शिव बाबा रचयिता, और रचना कौन? ब्रह्मा बाबा रचना। अच्छा, इनमें मनुष्य कौन है और भगवान कौन है?
भगवान
शिव बाबा। और मनुष्य कौन है? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, तो मनुष्य माने नर, तो नर क्या बनाता है? नरक। ये कैसे कुमारका दादी के सामने जाएगी? कुमारका दादी अभी जिंदा होके आ गई हॉस्पिटल से, इन सबके चेहरे आज खींच लिए। सोच समझ के बताना, नर क्या बनाता है और भगवान क्या बनाता है?
भगवान
स्वर्ग बनाता है और नर्क नर्क बनाने वाले को क्या कहा जाता है? शैतान माने रावण। और स्वर्ग बनाने वाले को कहा जाता है? राम अथवा भगवान है। तो बड़े से बड़ा शैतान कौन हुआ फिर है? बड़े से बड़ा शैतान कौन हुआ है? देखो 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 कौन कौन बोल रहे हैं। अरे बोलते काहे नहीं?
हिंदी बोलते नहीं।
अरे कुछ है ऐसे तो हिंदी बोल जाते
हैं। दक्षिण भारत लो पुटी चेसिन भाषा नहीं। चुप ना।
अच्छा आनंद भाई क्लियर करो, इन लोगों को समझा नहीं क्या बात हो रही
है?
ठीक है, दुनिया को छोड़ना है ना, इसलिए सन्यासी बनना है।
हाँ।
बताओ इनको क्या बात क्या चल रही है, क्या पूछ रहे हैं बाबा, मुरली में पूछ रहे हैं
बाबा चेस्तर भगवंत एम चेस्तारो स्वर्गा మరి నరకాన్ని ఎవరు చేస్తారు? మరి ఈ వీరు ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఈ నరకాన్ని చేసేవారు ఎవరు అని?
समझ गई हूँ, आया बात समझ में आया नहीं आया? अरे बड़े से बड़ा शैतान कौन और ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन?
है शिव बाबा।
चलो ठीक है, ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव बाबा। अच्छा फिर ऊंचे से ऊंच शैतान कौन है? रावण के तो 10 सिर है, उनमें कौन सा सिर है?
इब्राहिम।
उसके ऊपर कोई सिर नहीं है, उन 5 या 10 सिरों के ऊपर कोई सिर नहीं है। कौन है? दे हनुमान। उसको कौन से रूप में दिखाया? आज बाबा ने गाली दी है, आज मुरली में गाली दी है। कौन सी गाली दी? गधा उल्लू पानी। तो गधा कौन? पहला पहला गधा कौन हुआ? अरे वो गधा कौन जिसके ऊपर कपड़े डाले जाते हैं घाट पे ले जाने के लिए? धोबी
कपड़े डालता
है। हाँ, वो गधे को ले जाता है घाट पे, गधे के ऊपर कपड़े डाल के फिर वहाँ जाके धोता है। है हाँ।
गाड़ी मीद गुटल सात लाइन वैसे
దక్షిణ భారత లో బాబా హిందీ సమజే
హిందీ जो भगवान के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप की भाषा नहीं समझते। अच्छा, जो बच्चे होते हैं घर परिवार में, जो भी बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की भाषा जानते हैं कि नहीं जानते?
जानते, वो तो वो घर में पैदा होकर उनका भाषा आ गया बचपन से।
वो लौकिक बच्चे हैं,
उससे बाहर का भाषा भी नहीं सीखा,
माने
अलौकिक असल बाप का भाषा नहीं आया।
अलौकिक बच्चे नहीं बने,
बच्चे ने थोड़ा थोड़ा समझे समझा। अलौकिक बच्चा थोड़ा 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 समझे लौकिक बर्ता
अच्छा 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 ठीक है। बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे?
ये बड़े बच्चे,
बड़े बच्चे। बड़ा बच्चा घर परिवार में कोई बच्चा हो और बड़ा हो जाए और माँ बाप की भाषा न समझे और न बोल सके, बच्चा बड़ा हो जाए और माँ बाप की भाषा समझे भी नहीं और बोल भी नहीं सके।
माँ बाप का भाषा आ जाता घर पे का, फिर भारत दुनिया में कैसा बात करते वो आ गया। घर का भाषा भाग का भाषा
भी भाषा बोले बोले चल गया हिंदी समझने अलौकिक बाबा
भारत दुनिया में यही बात करते ना
चल
हिंदी। राजस्थान में हिंदी बात करेंगे हिंदी आएगा, आंध्र में तेलुगु बात करेंगे, तमिलनाडु में तमिल बात करेंगे, कर्नाटक में कर्नाटक, भाषा भाषा बात करेंगे वही आएगा।
बात
थोड़ा पढ़े लिखे लिए आ जाएगा, थोड़ा पढ़े लिखे भी है ना బొమ్ము కూడా ఇంటి ఆ జై
మా పరిస్థితి అంతా ఎట్లా నడుపుతారు ఆయన నేర్పించేవాళ్ళు
ఇట్లే వస్తా బాబా ఇట్లే
నేర్పానే
అచ్చా ఇయ్య బతావ్ जो माँ बाप की भाषा नहीं बोल पाते वो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं?
छोटे बच्चे।
जो माँ बाप की भाषा नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप की भाषा नहीं बोल पाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं?
छोटे बच्चे।
तो छोटे बच्चे हैं तो अभी जल्दी जल्दी बड़े बच्चे नहीं बनना है? जल्दी जल्दी बड़ा बच्चा बनना है कि नहीं बनना है?
बनना उसके लिए नहीं आता ना हिंदी बोलते हैं कैसा सीखना बोलते हैं इतना भी सीखो नहीं आता।
क्लास करो रोज और रोज हिंदी सीखो, ऐसे नहीं क्लास छोड़ के बैठ जाओ।
ये चलो
हिंदी में है बोल के तेलुगु में सुना देते हैं सुन डालते हैं।
क्लास में कोई दूसरी भाषा नहीं बोलनी, क्लास में माँ बाप का घर है, क्लास करना माना माँ बाप के घर में गीता पाठशाला में बाप की भाषा बोलना, दूसरी भाषा बोलनी नहीं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं और वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश ही बोली जाती है, हिंदी उर्दू दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है ना। तो छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं वो एक दो साल के अंदर ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। तो आप भी पक्का कर दो, क्या अपने टीचर से पक्का कर दो कि हिंदी ही बोलनी है, क्या दूसरी भाषा नहीं बोलनी।
अमुक चार दिन बजे के बाबा तो हिंदी में
बोल रहे थे, तेलुगु बाबा से बातें करो, हिंदी में बातें करो, तेलुगु में नहीं। और क्लास में आओ तो हिंदी बोल रहे, दूसरी भाषा नहीं। जल्दी जल्दी बड़े बच्चे बन जाएंगे
बाबा, जल्दी जल्दी
ठीक। अच्छा भाषा ही नहीं आती तो पूछना करना क्या है?
ब्रह्मा का जो पाठ है वो अंत तक है,
ब्रह्मा का पाठ सृष्टि के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है,
नुदा हुआ है। तो जब वो जब बच्चा के रूप में पैदा हो जाएगा
है?
तो बच्चे के उसमें जब वो जन्म ले लेगा
है?
तो उसका क्या पाठ खत्म हो जाएगा?
तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, कौन सी आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए है?
जो ब्रह्मा है,
कौन है ब्रह्मा, कौन सी आत्मा ब्रह्म है?
दादा लेखराज वाली, जो
दादा लेखराज वाली आत्मा मूल ब्रह्म है, है? कौन सी आत्मा मूल ब्रह्म है? आदि माता जो जगदम्बा ब्रह्मा है, ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में जन्म ले लेती है। एक, एक इनकी बात नहीं पूरी हुई, धीरज धर मनगा धीरज धर। इनका प्रश्न ये है कि ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है, हैं? तो ब्रह्मा का पाठ जब स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है तो ब्रह्मा होगा तब तो स्थापना होगी, ब्रह्मा होगा ही नहीं तो स्थापना कैसे होगी। तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, तो ब्रह्मा है या नहीं है 69 के बाद?
ब्रह्मा है बाबा, वो बोले ना कि भूत, मतलब शरीर छोड़ के भी कार्य कर रहा है।
दुनिया मानेगी?
नहीं, अभी हम ब्राह्मणों में तो माना जा रहा है ना।
कौन है?
दादा लेखराज का सूर।
तो ब्राह्मणों में माना जा, लेकिन दुनिया को भी तो मनवाना है।
हमारा मतलब है कि बाबा जब वो शरीर ले लेगा, जब बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा, तब फिर
बच्चे के रूप में ब्रह्मा, ब्रह्मा जिसको तुम कहते हो वो ब्रह्मा है मूल रूप में?
मूल रूप में नहीं हो
तो फिर बीच वाले को क्यों पकड़ा ब्रह्मा के रूप में? मूल रूप में जो ब्रह्मा है वो तो रुद्रमाला का मणका है, जो रुद्रमाला का मणका है वो सृष्टि के जो मुख्य बीज है उन दो बीजों में से एक है, और दोनों बीज अंत तक पार्ट बजाएंगे जब तक पूरी नई दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती। 9,16,108 तो ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है, बीच में समाप्त नहीं हो सकता, पूरी स्थापना होनी है सतयुग की। 9,16,108 की पूरी स्थापना होगी, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा।
विष्णु का जो पांच वो जाए पांच ये
है,
उसमें दुर्योधन दुशासन कौन है और ये
उनमें दुर्योधन दुशासन कौन है, वो पुरुष तन पाने वाले कौन है? है जो पुरुष तन पाने वाले हैं वो कौन है? है बोलो बोलो, बोलते जाओ ना, धड़ाधड़ नहीं बोलते।
दादा लेखराज और प्रजापति,
एक तो दादा लेखराज दाढ़ी मूछ वाला, और दूसरा शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव भी दिखाते हैं। माना वो एक पार्ट ऐसा है जो श्याम भी है और सुंदर भी है। दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे क्या श्याम और सुंदर, उनको क्या कहेंगे? शरीर छोड़ने तक भी उनको क्या कहेंगे, श्याम कहेंगे या सुंदर कहेंगे? बोलते गए नहीं, शरीर छोड़ने के बाद सुंदर हो गए, पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं रही,
पढ़ने की दरकार
है। फिर एडवांस तो ज्ञान था ही नहीं, मनन चिंतन मंथन का जो अमृत निकलता है वो तो निकला ही नहीं और शरीर छोड़ दिया, तो उनको श्याम कहेंगे या सुंदर कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा ने जो पाठ बजाया वो है श्याम, और सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो होगा सुंदर। तो दो शरीरों को गायन है क्या? दो शरीरों का गायन है श्याम सुंदर, या एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर? एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर, वो कौन? प्रजापिता जो है, जब तक प्रजापिता है 500 करोड़ की सृष्टि का पिता है, जब तक 500 करोड़ की सृष्टि पावन नहीं बनती तब तक उनका पिता है प्रजापिता, और वो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाएगा कैसा? श्याम। मुरलीम बोला ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और कोई धर्म में धर्म पिता नहीं होता, इतना श्याम काले ते काला और इतना सुंदर गोरे ते गोरा पार्ट बजाने वाला और कोई नहीं हो सकता। भयंकर से भयंकर पार्ट और प्यार से प्यार भरा हुआ ऐसा पार्ट जिसमें सुख ही सुख भरा हुआ हो, सुखदाता के रूप में माना जाता है, प्यार का सागर के रूप में माना जाता है। किसको? भगवान को कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है न कि मार का सागर। मार के लिए धर्मराज को निमित्त बना दिया कि ये मार का पार्ट बजाए, वो मेरा राइट हैंड है, मैं धर्मराज नहीं हूं। कहीं बोला मैं धर्मराज हूं? मैं धर्मराज नहीं हूं, कौन धर्मराज है? मेरा राइट हैंड धर्मराज है। तो वो श्याम पार्ट भी बजाने वाला है और सुंदर पार्ट भी बजाने वाला है। तो दाढ़ी मूछ वाला कौन सा पार्ट हुआ? श्याम पार्ट हुआ। श्याम पार्ट माना क्लीन शेव नहीं बना, देवता नहीं बना, राक्षस है। क्योंकि जब तक राक्षसों का अंत नहीं होता है दुनिया में से, तब तक पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने वाले की जरूरत है। बच्चे इतना पाप नहीं कर सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, जितना बाप पाप का पार्ट बजा सकता है, पापों का बाप वो सारी सृष्टि का बाप है ना, देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। तो इतने दुनिया में जो राक्षस फैले हुए हैं, ये सब बच्चे हैं ना, उन सब का बाप भी तो होना चाहिए जो उनको ठिकाने लगाए, सतो प्रधान बनाए। तो वो बाप का पार्टी भी है, इसलिए काले ते काला है। लेकिन किसके लिए काला है? हैं? कालों के लिए महाकाल है और गोरों के लिए महागोरा है। सब के लिए काला नहीं है, ऐसे होता है दुनिया में। एक आत्मा एक पार्ट बजाने वाली एक आत्मा कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है और वही आत्मा कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। अब बुरा है कि अच्छा है, क्या फैसला किया जाए? ऐसे ही है, देवताओं के लिए महादेव है और राक्षसों के लिए महाराक्षस है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न पूरा हुआ? अभी तुम्हारा प्रश्न क्या था?
विष्णु कौन कौन
है?
विष्णु में,
हाँ, विष्णु के जो भुजाएं हैं, विष्णु में पार्ट बजाने वाले जो पार्टधारी हैं, उनमें दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाला कौन? और
सीता द्रौपदी
और पार्वती का पार्ट बजाने वाला कौन? अब्बल नंबर पार्वती का पार्ट बजाने वाला कौन? और अब्बल नंबर राक्षस का पार्ट बजाने वाला कौन है? वैष्णो देवी राक्षस का पार्ट बजाने वाली। भक्ति मार्ग में कहीं भी विष्णु को
लड़ते
हैं, खराब रूप में दिखाया ही नहीं गया है। विष्णु सदैव देवताओं को पक्ष देता है, है। तो जो बड़े से बड़ा दुर्योधन कौन है, पांच भुजाओं में, पांच भुजाएं नहीं कहेंगे, चार भुजाएं और एक उनको चलाने वाला। तो चलाने वाला तो बाईं ओर की भुजाओं को भी चलाने वाला है और दाईं ओर की भुजाओं को भी चलाने वाला है, वो तो दोनों का बाप हो गया, उसकी तो बात ही निकल गई, वो तो राक्षसों बाईं ओर की भुजाओं, राक्षसों का भी बाप और देवताओं का भी बाप, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अब रह गई चार भुजाएं, चार भुजाओं में दुर्योधन दुशासन अव्वल नंबर का कौन और अव्वल नंबर की पार्वती कौन, द्रौपदी कौन, सीता कौन, दो सीताएं दिखाई गई रामायण में। एक सीता से कहा, ओरिजिनल सीता से कहा, तुम पावक में करो निवासा, जब तक जब लगे रह करो निशाचर नासा। तुम पावक माने योगाग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। उसको तो योग में बैठा दिया, योगाग्नि में, कौन से सन में बैठा ही दिया है? अरे कभी शूटिंग पीरियड में बैठाया होगा ना, कुछ बातें प्रैक्टिकल हैं ना, कि ऐसे ही झूठी बातें है? हाँ, 76 से पहले ही बैठाई दिया, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूं। एक सीता तो वो हो गई अव्वल नंबर सीता, और दूसरी सीता सोने की मूर्ति बना के रख दी, कहते पंच तत्वों की मूर्ति, क्या पंच तत्वों की मूर्ति बना करके रख दी, और उस मूर्ति को रावण उठा ले गया। प्रैक्टिकल बातें हैं या झूठी बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। एक कैसेट भी चली है सीता रावण की जेल में, क्या एडवांस में एक कैसेट चली है, सीता इस समय कहाँ है, किसके अंडर में है? सीता रावण की जेल में है। तो कौन सी सीता रावण की जेल में है, अव्वल नंबर या दूसरे नंबर की? दूसरे नंबर की सीता रावण की जेल में। हाँ, तो बात हो रही थी भुजाओं की, वो लेफ्टिस्ट भुजाएं कौन जो दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाती हैं, और राइटियस भुजाएं कौन जो राइटियस काम ही करती हैं, लेफ्टिस्ट काम नहीं करती। है? बताओ बताओ जल्दी बताओ।
लक्ष्मी धन बांटता है।
हाँ, लक्ष्मी धन बांटती है और
जगदम्बा जाओ,
जगदम्बा धारण करती है, तो जो धारण करे और एक जो बांटे। कोई कोई विद्वान आचार्य होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनसे विद्वता में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होते हैं। ऐसे ही इन भुजाओं में भी ज्ञान का धारण करने वाली शक्ति कौन, जो धारण बहुत करती है ज्ञान रत्नों को। बड़ी बड़ी दीदी दादियां मुकाबला नहीं कर सकती क्या, एडवांस के भी बड़े बड़े महारथी थरथराते हैं। और प्रैक्टिकल में बाप की सहयोगी कितना बन पाती नई दुनिया स्थापन करने में, नई दुनिया की यूनिटी बनाने में कितना सहयोगी बनती है, सहयोगी बनती है या विरोधी बनती है? है बाप की सहयोगी बनती है या माया रावण की सहयोगी बनती है? है अरे रावण के कितने मुख? 10 मुख, 5 मुख माया के रावण के पुरुष मुख और 5 मुख स्त्री मुख, उनमें मंदोदरी किनको कहा गया? मंद उदर पेट वाली मंद बुद्धि कौन से सिर है? काम क्रोध लोह मोह अहंकार या पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये जड़त तो है, जड़त्वमयी बुद्धि है, मंद उदर वाले हैं। मुरली वाला मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, जिन्होंने सबसे ज्यादा साथ निभाया सबसे ज्यादा संग किया सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया क्या? चाहे विजयमाला हो और चाहे रुद्रमाला हो, इतना मिलन मेला और किसी ने नहीं मनाया। कितना साथ किया होगा, कितना संग किया होगा, ऐसे मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते तो उन्हें मंद बुद्धि कहें या तीव्र बुद्धि कहें? हो गई ना मंद बुद्धि, मंद मंदोदरी। आखिरी रावण का ही साथ दिया ना, राम का तो साथ नहीं दिया ना। और अव्यक्तवाणी में अभी बोल भी दिया, क्या बोला? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है, दी है ना? माना नई दुनिया बनी है, अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया रुद्रमाला के अंदर। भले संपन्न दुनिया नहीं बनी है स्वर्ग की, लेकिन फाउंडेशन पड़ गया। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन खोदी जाती है ना, जमीन खोदते हैं और उसके अंदर पत्थर डालते हैं। तो जो फाउंडेशन में पत्थर या ईंटें डाली जाती हैं वो दिखाई पड़ती हैं? नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही अभी भी चाहे रुद्रमाला हो एडवांस पार्टी हो और चाहे विजयमाला हो या बेसिक पार्टी हो, कोई को भी फाउंडेशन नई दुनिया का दिखाई नहीं पड़ रहा है। अष्टदेवों से तो बात ही की है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है ना, उसमें आना जाना करते हो ना, तो वो यूनिटी किसने बनाई? रावण की जेल में रहने वाली सीता ने बनाई या बनाने वाले कोई और हैं? नई दुनिया की यूनिटी प्योरिटी के आधार पर किसने बनाई होगी? अब्बल व सीता है, दिखाई पड़ रही है कहीं? है ऐसे ही बोल दिया। अब विजयमाला की शुरुआत हो गई, फिर विजयमाला के लिए बताया कि विजयमाला की हेड वैष्णो देवी तब प्रत्यक्ष होगी, तीसरी मूर्ति जब 3.5-4 साल पूरे हो जाए, अंतराल का पीरियड। जैसे पहली मूर्ति ब्रह्मा, उसको प्रत्यक्ष होने के लिए 14-15 साल लगे, तब 51 में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, उससे पहले नहीं। ऐसे ही दूसरी मूर्ति कितने साल लगे? सात आठ साल लगे तब 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ। तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी 7-8 साल लग गए, आधा टाइम लगा ना। तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 2004 में तो शूटिंग पूरी हो गई, संकल्पों के आधार पर जो चलने वाली शूटिंग है वो टाइम पूरा हुआ। तो अंतराल का पीरियड आगे कितना होना चाहिए? 3-4 साल होना चाहिए। तो 3-4 साल का पूरे होते हैं, 2008 में पूरे होते हैं। उससे पहले तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली नहीं। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुई है तो उसका नाम कहां से आ जाएगा? यूनिटी बनाने वालों में उसका नाम कहां से आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? वो तो चंद्रवंश से आती है। चंद्रवंश से ज्यादा पावरफुल है या सूर्यवंश से ज्यादा पावरफुल है? तो सूर्यवंश वाले जो मणके होंगे वो पहले फाउंडेशन डालेंगे नई दुनिया का, या चंद्रवंश ही डालेंगे? सूर्यवंश ही डालेंगे। तो नई दुनिया की यूनिटी बनाने में वो सीता नहीं हो सकती जो रावण की जेल में। जो खुद ही परपुरुष के अधीन है, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण। कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बनती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। एक है शिव शंकर भोलेनाथ की गीता और एक है कृष्ण की गीता। कृष्ण की गीता के ऊपर, कृष्ण की गीता के दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता के दिल पर किसकी छाप पड़ी हुई है? शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। तो दिल की बात दिखाई नहीं पड़ती है किसी को, दिखाई पड़ती है क्या? है दिल के अंदर क्या है कौन जाने? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो समाधान हुआ, विष्णु की कौन सी भुजाएं लेफ्टिस्ट हैं और कौन सी भुजाएं राइटिस्ट हैं? कौन सी भुजाएं दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली रही और कौन सी भुजाएं ब्रह्मा की ऐसी हैं, ब्रह्मा रूपी भुजाएं जो स्थापना का पार्ट बजाने वाली है? कोई स्थापना में विशेष सहयोगी, कोई विनाश में विशेष सहयोगी, कौन है? स्थापना में कौन विशेष सहयोगी? वैष्णो देवी। एक बात बाद में जो इन्होंने बात कही वो समझ में आ गई है? नहीं आ गई, ये बीच में छोड़ देना है। हाँ बोलो।
दो हुआ ना, दो तो हो गया थे।
कौन कौन दो?
एक अव्वल नंबर सीता और जगदम्बा, एक स्थापना कार्य एक और विनाश कार्य।
नंबर दो का माल कौन, नंबर वन का माल कौन है? नंबर दो अच्छा होता है, नंबर एक अच्छा होता है? नंबर एक अच्छा माना जाता है, नंबर दो का डुप्लीकेट माना जाता है। हाँ यज्ञ के आदि में भी डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ था जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई जाती है। दिखाई जाती है नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है ना, वहां पूजा नहीं होती है ब्रह्मा की, मूर्तियां रखी हुई हैं लेकिन पूजा नहीं है। वहां के जो रहने वाले हैं
देखने के लिए जाते हैं,
हाँ दूसरे लोग सिर्फ देखने लिए जाते हैं दर्शन करने, लेकिन जो दूसरे जो वहां रहने वाले हैं पंडित पुजारी वो ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे माउंट आबू में रहने वाले हैं, जो भी रहने वाले हैं वो ही उसकी पूजा करते हैं ट्रांसलाइट के चित्र की। जो रहने वाले नहीं है वो उसकी पूजा भी नहीं करते। हाँ तो बताओ कौन सी दो भुजाएं, दुर्योधन दुशासन के रूप में जो भुजा माने आत्मा सहयोगी, कौन सी दो भुजा रूपी आत्माएं हैं जो दुर्योधन दुशासन के रूप में पाठ बजाती हैं, और कौन सी दो भुजाएं हैं जो सीता और पार्वती के रूप में पाठ बजाती है, किस रूप में? लो सीता ही बोल रही
है। आप संस्कृति वैष्णवी देवी दोनों
है, स्थापना और पालना के रूप में पाठ बजाने वाली, ओम राधे स्थापना के रूप में और वैष्णवी देवी पालना के रूप में पाठ बजाने वाली। हाँ जी प्रश्न क्लियर हो गया।
तो दो है ना,
दुर्योधन दुशासन कौन, कौन सी आत्मा है, है? और सीता द्रौपदी कौन, बोलो तो समझ में आया तो बोलो।
सीता द्रौपदी ओमराधे और
प्रश्न चित्ती बने रहोगे क्या, प्रसन्न चित्त भी तो हो। अरे जवाब मिल जाता है तो खुश हो जाती ना आत्मा। अब बताओ कौन कौन क्या क्या है, है?
एक वैष्णवी और ओमराधे, सपना कार्य और पालना कार्य और विनाश कार्य में दो आत्मा
कचवाए रहे बोलने में,
जगदम्बा और दादा देव
है,
जगदम्बा
है तुम्हारी लेफ्ट से भुजा ज्यादा तीखी
है। शिव बाप दादा मना
है,
शिव बाप दादा मना,
हाँ
चैतन्य शिवालय मना बात एक ही है ना दादा,
शिव
बाप दादा मना
चैतन्य शिवालय,
शिव बाप दादा मना चैतन्य शिवालय मना बात एक ही है ना दादा।
क्या पूछ रहे हैं समझ में आया,
बोल रहे हो कि शिव बाप,
हाँ
बाप दादा और चैतन्य शिवालय दोनों एक ही है, एक ही है क्या?
चैतन्य शिवालय शिव बाप दादा दोनों एक है ना,
शिव बाप
दादा और चैतन्य शिवालय दोनों एक ही है क्या?
नहीं, जब शिव नाम जोड़ देते हैं तो बाप साबित ही हो जाता है, शिव कहेंगे तो बाप है ही है, और दादा किसके लिए बोल दिया, बाप दादा है कंबाइंड क्या, और माता पिता है अलग अलग, हाँ तो पूछ के आ रहे हैं शिव बाप दादा,
शिव बाप दादा मना चैतन्य शिवालय मना बात एक है,
चैतन्य शिवालय
बाप दादा मना चैतन्य शिवालय
दोनों एक ही है ना,
दोनों एक ही है, बल्कि एक तन के द्वारा कंबाइंड पार्ट चल रहा है ना, तो एक ही हुए ना, जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है उसे एक कहेंगे या दो कहेंगे,
एक
ही कहेंगे।
कल्पांत संग में जी प्रजापिता ब्रह्मा मना पतित पावना सीताराम मना बात एक ही, कल्पांत संग में जी प्रजापिता ब्रह्मा मना पतित पावना सीताराम मना बात एक ही,
कौन करी ब्रह्मा
कल्पांत संगम युगी प्रजापिता ब्रह्मा,
आप तेलुगु में बोलिए
बाबा, ये बोल रहे हैं ना
हिंदी में, ये हिंदी आपकी ये सही नहीं हिंदी,
वही बोल रहे की संगम युगी प्रजापिता कल्पांत करी प्रजापिता ब्रह्मा,
प्रजापिता ब्रह्मा पतित पावना सीताराम बात एक ही आएगा,
प्रजापिता ब्रह्मा और सीताराम बोल रहे हैं दोनों एक ही है क्या,
प्रजापिता ब्रह्मा
जो संगम का
वो है जो पांच ब्रह्मा में से बाप का पार्ट बजाता है,
जो बीच वाला है।
जब पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला, तो सीता का नाम आगे है क्या, और राम का नाम पीछे है। पीछे क्यों, रुद्रमाला आगे या रुद्रमाला पीछे? रुद्रमाला आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? शिव की माला है रुद्रमाला, और विष्णु की माला है विष्णु वाला, कौन सी ऊंची? रुद्रमाला ऊंची, और रुद्रमाला में राम है, रुद्रमाला में राम है, और विजयमाला में आप बल नंबर सीता है। तो सीता का नाम पहले होना चाहिए या राम का नाम पहले होना चाहिए? है क्यों? हाँ, राम की आत्मा जो पार्ट बजाती है वो विदेशी बाप का पार्ट बजाती है। बाप इस समय क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन करके आया हुआ है। अगर विदेशी बन करके ना आवे तो सबसे मिल भी नहीं सकता। इसलिए बाप है विदेशी और माता है स्वदेशी। इसलिए अव्यक्त वाणी में पहली में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
बाप सिर्फ नर मनुष्य में ही क्यों आते हैं?
सवाल ये है, पतित पावन सीताराम में सीता का नाम पहले क्यों?
प्योरिटी।
हाँ, जब तक प्योरिटी नहीं है तब तक पतित पावन राम भी नहीं बन सकता, और राम की आत्मा तब तक पतित से पावन नहीं बन सकती जब तक उसको समान सहयोगी पुरुषार्थ ही नहीं मिलता। क्या हाँ, जो प्रवृत्ति मार्ग बनाने वाला साथी होना चाहिए वो समान पुरुषार्थ ही होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए?
समान होना चाहिए।
हाँ,
अभी बोले कि भगवान सिर्फ मनुष्य तन में ही आता है, मतलब
पुरुष तन में
आता है, ये क्यों?
बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण पुरुष तन में होती है या स्त्री चोले में होती है?
पुरुष चोले में होगी।
स्त्री कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि वाली हो लेकिन उसे साथी चाहिए जिंदगी में, संरक्षक चाहिए इस दुनिया में। जो रावण राज्य की दुनिया है उसमें स्त्री चोले को कोई न कोई छत्र छाया चाहिए, पति माना पाती रक्षा करने वाला चाहिए, इसी अधूरी है।
अगर वही आत्मा दोबारा दूसरी जन्म में स्त्री चोले में भी प्रवेश करता है?
हैं?
वही आत्मा?
कौन आत्मा?
मतलब आत्मा पुरुष चोलों में भी प्रवेश कर सकते हैं और स्त्री चोलों में प्रवेश कर सकते
हैं। संगम युग की बात करो
बाबा, जब ये
की बातें कुछ अंदर है वो तो बाहर आने दो।
क्लियर हो गया
है? क्लियर हो गया? अरे औरों को भी तो क्लियर होने दो, तुमने अंदर ही अंदर घुटोटा लिया।
माना वो चोला का असर पड़ता है वो?
चोला का असर नहीं पड़ेगा, संघ का रंग चोले के द्वारा लगता है या आत्मा का डायरेक्ट संघ का रंग लगता है?
चोले के साथ
लगता है
बाबा।
हाँ,
ये जो एक बोलावन की जैसे जैसे अठारह के बाद माँ आत्माएं बर्फ में दबेगी, तो इसका बेहद में क्या अर्थ है?
अठारह के बाद बर्फ में दबेगी
मतलब कंचन क्या है? बर्फ में दबने के बाद होगी।
हाँ, वो तो ठीक है।
हाँ, तो इसका बेहद में क्या अर्थ?
वेद में अर्थ क्या है? यहाँ जिन्होंने अपने संकल्पों रूपी खून को जाम कर लिया है पुरुषार्थी जीवन में, उनमें उनको अपना खून जाम करने की दरकार नहीं है बर्फ के अंदर। और जिन्होंने जाम नहीं कर पाया, अटैचमेंट कहीं न कहीं रह गया, नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा नहीं बने, तो उनको कुछ न कुछ सजा मिलनी चाहिए कि नहीं?
बर्थ में दबने का पीरियड अगर जिसने संकल्प
18 से लेकर के 36 तक का सारा ही पीरियड हो गया ना।
हाँ तो बाबा 18 से 30 तक ठीक है, जिसने संकल्पों का खून जाम कर लिया उसके लिए तो ठीक है, बर्थ में नहीं दबेगा। और जिसका जिसने जाम नहीं किया उसका पीरियड 18 से ही शुरू हो जाएगा बर्थ में दबने का?
बिल्कुल शुरू होगा, किसी का पहले किसी का बाद में,
स्थूल में, स्थूल बर्थ में।
हाँ जो 8 है वो अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लेंगे तो वो एक साथ होगा या नंबरवार होगा?
नंबरवार
होगा। ऐसे ही वो भी जो उन 8-9 धर्मों में आने वाली आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्म की या दूसरे दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, वो सारी आत्माएं 8 × 4.5 लाख वो भी नंबरवार है, उनका टाइम अपना अपना नुदा हुआ है।
18 के बाद
उनका अपना अपना नंबर है, अपना अपना टाइम है।
और हाँ मिनिमल जोन को संगठन जाने पर दोनों योगदान जा सकते हैं, ये तो बात सारे छोड़ करके मिनिमल जोन संगठन के लिए।
हाँ
मिनिम मधुबन तारापिलगुड में है ना, हम दोनों योगदान एक बार जा सकते हैं तो एक ही जा सकते हैं।
किसने मना किया
ना,
ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ?
गीता पाठशाला मनाने के लिए एक ही रहना चाहिए,
किसी को निमित्त बना के बैठा दो। कोई भी माता को निमित्त बना के बैठा दो घर में।
योगल में भी ध्यान में रहने तो नहीं।
मान लो माता चली गई, माता मिनी मधुबन चली गई जो यज्ञ की निमित्त माता है, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो गीता पाठशाला में बैठे रहे, घर उन्हीं का है और माताएं कन्याएं आ रही है और उन्होंने कहीं दुर्योधन तो शासन पाना दिखाना शुरू कर दिया तब
है?
तब क्या करेंगे, जिम्मेवार कौन होगा, कौन जिम्मेवार होगा है? बोलो, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, समझ आ गया? अच्छा
बाबा, वार्तालाप 79 में
है,
वार्तालाप नंबर 79 में
है,
जिस आत्मा में 1936 में से प्रवेश करता है,
है?
जिस पुरुष में, जिस तन में 1936 में से प्रवेश करता है,
है?
उसी आत्मा में 76 में प्रवेश करता है,
है?
है? बाप के रूप में और टीचर के रूप में,
है?
तो उसे 76 में क्यों प्रवेश करता है? उससे पहले तो प्रवेशता हो जाता है, उसे
पहले प्रवेश हो जाता है, वो सिर्फ होता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन का निमित्त बनाने के लिए। यज्ञ के आदि में ज्ञान संपूर्ण था या अपूर्ण था? ज्ञानी और भक्ति, भक्त, ज्ञान और भक्ति, इन दोनों में स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? भक्ति स्त्री है और ज्ञान पुरुष है। तो यज्ञ के आदि में संपूर्ण ज्ञान था या अधूरा ज्ञान था? तो अधूरे ज्ञान को भक्ति कहेंगे या पुरुष कहेंगे? बोला मुरली में ऐसे 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 बच्चे थे